हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। न्यूयॉर्क सिटी में रात के लगभग 2 बज रहे थे। किसी अंडरग्राउंड जगह पर, एक टेक लैब जैसी दिखने वाली जगह पर दर्जन भर से ज्यादा आदमी काम पर लगे थे। अचानक उनके सबकी स्क्रीन एक साथ बंद हो गई और टेक्निकल एरर दिखाने लगी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी दीवार पर लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर लाइंस चलने लगी। स्क्रीन पर पहले पड़ाव के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चल रही थी। अचानक ही वो उसमें वहां के दृश्य के बजाय लाइंस आने लगी। इसी के साथ एक आदमी जल्दी से उठा और जोर चिल्लाया, ब्रेड ब्रेड प्लीज कम लुक एट द स्क्रीन, व्हाट द शिट इज हैपनिंग। उसके चिल्लाने के साथ ही वहां काम कर रहे बाकी सभी लोग स्क्रीन के आगे खड़े हो गए। उनमें कुछ आदमी थे तो कुछ औरतें, ज्यादातर उनमें कम उम्र के लोग ही थे। उसने जिस आदमी ब्रेड को आवाज लगाई थी वो उनका हेड था। वो स्क्रीन के सामने आया और अपना सिर पकड़कर बोला, पहला पड़ाव हमारे हाथ से निकल गया है। जब हम दिन रात इन पर आंखें लगाकर बैठे रहते हैं, उसके बावजूद कोई इतनी टाइट सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे हैक कर सकता है? ब्रेड को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। युग के हैकर्स उनके पहले पड़ाव पर पहुंचते ही काम पर लग गए थे। उन्होंने कृषा के सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट करते ही वहां की पूरी स्थिति अपने हाथ में ले ली थी। ब्रेड के कैमरा में ऐसे लग रहा था जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो और वहां कोई नहीं आया था, जबकि ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि युग के हैकर्स काम पर जुटे थे। ब्रेड और उसके आदमी वही देख पा रहे थे जो युग के हैकर्स उन्हें दिखा रहे थे। ब्रेड भी एक प्रोफेशनल हैकर था और सातों पड़ावों के सिक्योरिटी सिस्टम के सभी टेक्निकल काम संभालता था। उसे समझते देर नहीं लगी कि सब कुछ कैसे हुआ होगा। ब्रेड हैरान परेशान वहां खड़ा था, तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आकर बोली, जो भी हो सर, हमें मिस्टर सिंघानिया को इन्फॉर्म करना ही होगा। दूसरे पड़ाव की सिक्योरिटी हमें और टाइट करनी होगी या बाकी सभी बचे हुए पड़ाव को भी देखना है। मैंने सभी टेक्निकल इश्यूज अपनी तरफ से अच्छे से हैंडल किए थे। उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम हैक कर लिया, इसका मतलब वो बाकी सिस्टम को भी आराम से हैक कर सकते हैं। मुझे आदित्य सिंघानिया से बात करके वहां ह्यूमन सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। समझ नहीं आ रहा कि उस पड़ाव को सिर्फ माफिया प्रिंसेस अनलॉक कर सकती है, तो उसके बिना वो कैसे खुल गया होगा। आई होप कि ये एक टेक्निकल एरर ही हो, ब्रेड ने जवाब दिया। उसके हिसाब से माफिया प्रिंसेस सारा सिंघानिया थी, जो कि इस वक्त अमृता चौधरी और आदित्य सिंघानिया के साथ रह रही थी। ब्रेड ने उसी वक्त आदित्य सिंघानिया को कॉल किया और उसे वहां की स्थिति समझाई। पूरी बात जानने के बाद आदित्य सिंघानिया ने गुस्से में कहा, मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ा था और तुम्हारे होते हुए आज वो युग राणा उससे पहले पड़ाव तक पहुंच गया। ये उसकी पहली और आखिरी जीत होनी चाहिए। अगर अगले पड़ाव को उसने हासिल कर लिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को जान से मार दूंगा। लेकिन सर, बिना माफिया प्रिंसेस के कोई इतना स्ट्रॉन्ग लॉक अनलॉक कर भी कैसे सकता है? ब्रेड ने हैरानी से पूछा। फिर वो कुछ पल रुक कर बोला, सर, मिस सारा सिंघानिया आप ही के साथ है ना? अभी भी ज्यादा लोगों के सामने कृषा के माफिया प्रिंसेस होने का राज खुल नहीं था, पर अब छुपाकर भी कोई फायदा नहीं था। फिर भी आदित्य सिंघानिया ने कृषा की सिक्योरिटी के चलते कहा, पिछले दिनों वो किडनैप हो गई थी, हो न हो माफिया प्रिंसेस ने ही उसका फायदा उठाया होगा। तुम चिंता मत करो, अब हमारी माफिया प्रिंसेस बिल्कुल सुरक्षित है। ब्रेड मिस्टर सिंघानिया के जवाब से सैटिस्फाई नहीं हुआ था। वो आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले आदित्य सिंघानिया ने कॉल कट कर दिया। वो इस वक्त पेरिस के किसी होटल में अमृता के साथ थे। आदित्य सिंघानिया के चेहरे पर गुस्सा देखकर और उनकी बातें सुनने के बाद अमृता को उनके बिना कहे ही सब समझ आ गया था। अमृता ने नजरें नीचे की और धीमी आवाज में कहा, तो उसने पहले पड़ाव को पार कर लिया है। अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो माफिया किंग की पोजीशन हासिल कर लेगा और फिर बाद में हमारी कृषा के साथ वही करेगा जो उसकी बुआ हरलीन के साथ हुआ था। उसकी आंखों में मैंने कृषा के लिए जज्बात महसूस किए हैं। रही बात बाली बचे पड़ावों की, तो उन तक मैं उसे पहुंचने नहीं दूंगा। कृषा के साथ गलत करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। मेरे जिंदा होते हुए वो और उसका दादा कुछ नहीं कर पाएगा, आदित्य सिंघानिया ने सख्ती से जवाब दिया। कुछ देर तक उन दोनों के बीच एक अजीब सन्नाटा छाया रहा। फिर आदित्य सिंघानिया ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुंबई निकलने की तैयारी करो, अर्जुन अभी तक वहीं पर है, उसे बुलाओ। जो भी हो उसे अब अपना काम संभालना ही होगा। हम वहां कितने दिनों के लिए रुकने वाले हैं? अमृता ने पूछा। जब भी वो कहीं पर जाते थे तो उनके रुकने के दिनों के हिसाब से अपने रहने की जगह तय करते थे। आदित्य सिंघानिया ने जवाब में कहा, हमारा विला क्लीन करवा लो, हम वहीं पर रहेंगे। जवाब देने के बाद आदित्य सिंघानिया वहां से जा चुके थे। सिंघानिया विला में रहने का मतलब था कि वो लंबे टाइम के लिए मुंबई जा रहे थे। अमृता आदित्य सिंघानिया के बताए हुए काम पर लग गई। मुगालिता, दूसरी तरफ पहले पड़ाव पर जीत हासिल करने के बाद युग कृषा के साथ जयपुर के लिए निकल गया। वो लोग जयपुर पहुंचे तब तक सुबह हो गई थी और कृषा इतनी थक गई थी कि उसे बस इस वक्त बेड के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने जयपुर के 7-स्टार होटल में चेक इन किया। कमरे के अंदर आते ही कृषा डायरेक्ट बिस्तर पर लेट गई है, उसने चेंज भी नहीं किया था। युग ने कृषा की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, हम लोग काफी देर से ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर से डेजर्टेड इलाके में घूम के आए हैं, कम से कम चेंज तो कर लो, कपड़ों में मिट्टी लगी होगी। कृषा ने आंखें बंद कर रखी थी और उसने बंद आंखों से ही जवाब दिया, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि दो कदम भी चल सकूं। जैसा कि तुमने कहा, हम काफी देर से ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं बहुत थक गई हूं। आज ऐसे ही सो जाती हूं, सुबह उठकर देख लूंगी। युग भी कृषा की तरफ हैरानी से देख रहा था। इतने से काम में वो इतना ज्यादा थक गई थी, जबकि युग बहुत बार बिना सोए काम करता था, फिर भी जब भी बेड पर आता था तो चेंज करके आराम से लेटता था। युग ने कृषा को वहीं पर छोड़ा और बाथरूम में चेंज करने के लिए चला गया। चेंज करने के बाद वो वापस आया तो कृषा को अभी भी नींद नहीं आई थी। उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था, इसलिए वो करवट बदल रही थी। युग को अपने पास देखते ही कृषा ने कहा, क्या मुझे कोई पेनकिलर मिल सकता है? अगर यही रहा तो रात भर नहीं सो पाऊंगी। कोई पेनकिलर नहीं लेना, सबसे पहले तुम चेंज करोगी, युग ने सख्त आवाज में कहा और कृषा के पास बैठकर उसे अपने पास खींच लिया। उसके ऐसा करने पर कृषा ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर ली और युग के चेहरे को देखने लगी। युग ने सबसे पहले कृषा का ओवरकोट निकाला और फिर एक एक करके बाकी कपड़े भी निकलने लगा। आज कृषा ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो काफी थक गई थी और ड्रेस चेंज करना चाहती थी। युग कृषा को बहुत प्यार से हैंडल कर रहा था। युग ने कृषा को लूज सा शर्ट पहनाया और फिर अपनी गोद में उसका सर रखकर सहलाने लगा। साथ ही युग धीरे धीरे कृषा के बालों में मसाज कर रहा था, जिससे थोड़ी ही देर में इतने थके के बावजूद कृषा को नींद आ गई थी। कृषा के सोते ही युग उसका सिर पिलो पर रख दिया। वो उसके पास आकर लेटा और कृषा को अपनी बाहों में ले लिया। आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, बस आगे भी ऐसे ही हेल्प करती रहना। वो दिन दूर नहीं जब माफिया वर्ल्ड को उनका नया किंग और क्वीन मिलने वाली होगी। सोचते हुए युग को नींद आ गई थी।